नमस्ते दोस्तों, मैं मंजू गुप्ता अपने इस परछाई चैनल में एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और एक नई कहानी लेकर। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। दरअसल ये कहानी मैंने अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ी और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ इसे बांट लेना चाहिए। बच्चों, हम लोग जो खाने को इतना वेस्ट करते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत सारा खाना खा सकते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, लेकिन उसके बाद उनके शरीर में कितनी स्फूर्ति रहती है ये उन्हें भी मालूम है। सारा दिन थकाऊ उबाऊ सा निकल जाता है। तो सुने एक नई कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी है 1857 के बाद की। लखनऊ की कहानी बंदा मेहदी नाम के खाने पिलाने के शौक रखने वाले मशहूर हकीम साहब के दौलत खाने से शुरू होती है। हकीम साहब ने एक पहलवान को दावत दी। पता है पहलवान की क्या खास बात थी? नहीं पता ना? वो रोज सुबह 20 सेर दूध पीता, 2.5 सेर पिस्ते बादाम खाता, और इतना ही नहीं, दोपहर और शाम को 2.5 सेर आटे की रोटियां और मझोले कद के बकरे का सारा गोश्त हजम कर जाता था। देखा जाए तो पहलवान दावत का न्योता पाकर हकीम के दौलत खाने तक पहुंचा, क्योंकि हकीम साहब को पता चला था कि पहलवान इतना खाना खाता है। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार इसकी भी आप भगत करके देखी जाए। तो हकीम साहब ने पहलवान को अपने दौलत खाने पर बुलाया। अब पहलवान बड़ी खुशी खुशी वहाँ पहुँच तो गया। उसने देखा कि नाश्ते का तो वक्त भी हो गया, लेकिन नाश्ता तो मिला नहीं। इसलिए भूख की बेचैनी में थोड़ी देर सब्र कर इधर उधर देखता रहा। लेकिन जब देखा कि हकीम साहब तो उसे तृप्त करने के लिए कोई सोच ही नहीं रहे हैं, तो उसने अपनी सारी हेजिटेशन, सारा संकोच त्याग दिया और बोलने लगा, भाई कुछ खाने के लिए लाओगे या यूं ही भूखा मार दोगे मुझे? लेकिन हकीम साहब उसे फिर भी टालते रहे। अब उसका गुस्सा सातवें आसमान तक। उसने कहा कि खिलाना है तो खिलाओ, नहीं तो मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। इस धमकी के बाद हकीम साहब उठे और जैसे तैसे उसे थोड़ा और सब्र रखने के लिए राजी कर लिया और उसे वादा कर रसोई के अंदर गए। इंतजार की घड़ियां खत्म होने तक के लिए कुछ भिजवाता हूं, तब तक तो थोड़ा सब्र रखो, हकीम साहब ये कहकर अंदर चले गए। इसके अगले ही पल एक सेविका ने बड़े करीने से ढका हुआ एक बड़ा सा थाल लाकर पहलवान के सामने रखा। उसे देखकर तो पहलवान की जान में जान आ गई। उसे लगा जरूर इसके अंदर अब तो बहुत बढ़िया बढ़िया खाना होगा, बढ़िया बढ़िया पकवान होंगे, मेरी भूख मिटेगी। लेकिन ये क्या, थाल का पर्दा हटाया, उसमें एक छोटी सी तश्तरी में महज छटाक भर पुलाव। ये तो मेरे एक कौर के लिए भी काफी नहीं है, ये क्या मजाक है, उसने सोचा और उतना खाए बिना भी उठ जाने के लिए खड़ा हुआ। वहां बैठे बाकी लोगों ने समझाना बुझाना शुरू किया तो तैश में आकर तश्तरी का सारा पुलाव उसने एक बार में ही मुंह में डाल लिया और बगैर मुंह चलाए वहां से चला गया। लेकिन 5 मिनट बाद फिर लौटा और पानी मांगने लगा। फिर तो वो हर 5 मिनट के बाद पानी मांगता। उसने कितनी बार पानी पिया और कितनी डकारें ली। तब तक दस्तरखान बिछ गया था, सजे धजे थाल आ गए और खाना चुना जाने लगा। बच्चों, हमारे यहाँ कहते हैं खाना परोसना, लेकिन अगर हम मुस्लिम सभ्यता में देखें तो वहाँ पर लखनऊ सभ्यता में परोसा जाने की बजाय चुना जाना कहा जाता है। अब हकीम साहब ने पहलवान की ओर उसी पुलाव की पाव भर की थाली बढ़ाई और कहा, लीजिए पहलवान साहब खाइए, मुझे अफसोस है कि इसे बनने में थोड़ी देर हो गई और आपको तकलीफ उठानी पड़ी। पहलवान, ना, मैं नहीं खा सकता, तौबा। लेकिन पहलवान ने तौबा सी करते हुए कहा, हकीम साहब अब तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इतना अघा चुका हूँ कि अब एक चावल भी नहीं खा सकता। हकीम साहब फिर भी इसरार पर इसरार करते रहे, बार बार उसे कहते रहे, मनाते रहे कि कुछ तो खा लो, थोड़ा सा तो खा लो। लेकिन पहलवान बोला, अब खाऊं तो भला कैसे खाऊं, पेट में जगह ही नहीं बची। फिर हकीम साहब ने सारा पुलाव अपने पेट के हवाले कर लिया और तंज करते हुए यानी कमेंट करते हुए कहने लगे, पहलवान साहब 20-30 शेर खा जाना इंसान की नहीं,
बैलों और भैंसों की होती है। इंसान की गिजा तो ऐसी होनी चाहिए कि वह बस दो कौर खाए, गिजा यानी नियत कि दो कौर खाए, और 20-30 शेर गल्ला या गोश्त वगैरह खाने के बाद ज़्यादा ताकत और फुर्ती पाए तो मुझे बताना। पर कल चलो कोई बात नहीं, मेरी ओर से कल फिर आपके लिए दावत है, फिर आना। अगले दिन पहलवान आया तो बोला, हकीम साहब आपके पुलाव के एक कौर पर 20 शेर दूध, शेरों में वे गोश्त और गल्ला कुर्बान। कल जैसी ताकत और फुर्ती मैंने इससे पहले ज़िंदगी में कभी नहीं पाई। हकीम साहब सुनकर मूंछों में मुस्कुराने लगे। तो बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये है और इस कहानी का कहने का मतलब ये है कि हम थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं, स्वास्थ्य के लिए खाएं, सिर्फ पेट में ठूंसने के लिए नहीं खाएं। इसलिए नहीं खाएं कि हमें बहुत सारा खाना है, अपने शरीर को देना है, शरीर को देना है, लेकिन घास फूस नहीं, ताकत देनी है। तो बच्चों, जब भी हमारे शरीर में चुस्ती स्फूर्ती रहेगी, हर काम में हमारा मन लगेगा, हम अत्याचारों से दूर रहेंगे, बुरी बातों से दूर रहेंगे, क्योंकि मन स्वस्थ होगा तो हमारी सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो एक नई कहानी के लिए तब तक के लिए अलविदा दीजिए अपनी मंजू गुप्ता को, फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय। नमस्ते दोस्तों, मैं मंजू गुप्ता आज फिर आपके सामने अपने इस परछाई चैनल में लेकर आई हूँ एक नई कहानी आप सबके लिए। सुनने के लिए तैयार हैं? कहानी का नाम है लकड़हारे की खुददारी। हुआ यूँ कि एक बार हातिम अरब के एक कबीले का सरदार था। वह बहुत बड़ा दानी और परोपकारी था। एक बार बहुत से लोग उसके पास बैठे थे। उन्होंने पूछा, साहब क्या आपने कभी अपने से बड़े आदमी को देखा है? वैसे तो हम जानते हैं कि आपसे बड़ा इंसान इस धरती पर तो कोई हो ही नहीं सकता, फिर भी हम आपके मुंह से आपके सवाल अपने इस सवाल का जवाब सुनना चाहते हैं। हातिम बोले, हाँ मैंने स्वयं से बहुत बड़ा इंसान देखा है, बहुत ही साहसी, परिश्रमी और ईमानदार था। मैं उससे मिला भी था, बातें भी की थी। मेहरबानी करके हमें भी बताइए कि वह कौन था और कहाँ था, आपसे वह किस तरह से बड़ा था, हम सभी जानना चाहते हैं। हातिम ने बताना शुरू किया। एक दिन अरब के कुछ मालदारों को दावत के लिए 40 ऊंट जिबह मीन्स कत्ल किए। वैसे उस दावत में कोई भी शामिल हो सकता था, मैंने कभी किसी को मना किया ही नहीं। पूरी तैयारी कर मैं उसी किसी काम से जंगल की ओर चला गया। जंगल में मुझे सूखी लकड़ियों का गट्ठर सिर पर उठाए एक लकड़हारा मिला। मुझे बहुत तरस आया उस पर, उसका शरीर भी लकड़ियों की तरह सूख गया था। हातिम ने अपना परिचय दिए बिना कहा, भाई लकड़हारे, बेकार में ही लकड़ियों का बोझ अपने सिर पर उठाए मारे मारे फिर रहे हो, इससे अच्छा था कि हातिम के यहाँ चले जाते और उसकी दावत में जाकर माल उड़ाते। लकड़हारे ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, सुनिए साहब, जो स्वाद अपनी मेहनत की कमाई से सिकी रोटियों में होता है, हातिम के एहसान की आँच से सिकी रोटियों में कहा। हातिम ने कहा, लकड़हारे की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे लगा कि वह तो बहुत बड़ा इंसान है और मैं स्वयं उसके सामने बहुत ही बौना हूँ। तो दोस्तों, ज़रूर बताएं कि आज की कहानी आपको कैसी लगी, क्योंकि ये कहानी कहीं ना कहीं आपको ये बताती है कि हमें जल्दी के रास्ते नहीं खोजने चाहिए, तरक्की के लिए मेहनत का रास्ता ही ज़रूरी है। मेहनत की दो सूखी रोटी भी मिलेगी ना, तो वो भी अच्छा है। किसी की जेब काटने से, किसी का हत्या करने से या किसी को धोखा देने से आप एक बार तरक्की बेशक पा जाएंगे, लेकिन वो स्थायी नहीं होगी। हमेशा दिल में एक डर बना रहेगा, ना जाने कब धरे जाएँ, कब पकड़े जाएँ, और कहीं ना कहीं ना पकड़े जाएं, पर फिर भी एक बार मन में ये डर रहेगा कि भगवान तो देख ही रहा है। हम चाहे बाहर से कितना भी अच्छा दिखाएं, लेकिन वास्तव में अंदर से एक पीड़ा हमें महसूस होती रहेगी। दोस्तों, अगर तुम उस पीड़ा से मुक्ति चाहते हो तो ज़रूरी है कि मेहनत से काम करो। मेहनत से सिकी रोटियाँ जैसे वो लकड़हारा खा रहा था, तुम भी खाओ। सिकी हुई रोटियों का जो स्वाद है ना, वो बहुत अच्छा है, एक बार आजमा के देखो। थैंक यू, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मंजू गुप्ता को अलविदा। थैंक यू।